हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आयुष्मान ने गहरी सांस छोड़ी और जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ मौजूद रौनक बिना किसी वार्निंग के एकाएक उस पर चीख पड़ा। साले कहाँ मर रहा है अब तक? थोड़ी सी भी शर्म हया तुझ में बची है या नहीं? साले मेरी ही शादी में आया है और सुबह से मुझे ही अपना थोपड़ा नहीं दिखाया तूने? थोड़ा सब्र रख ले और अपनी बीवी को छोड़कर थोड़ा ध्यान अपने यार पर भी लगा ले। भाभी को अब सारी ज़िंदगी तेरे ही साथ रहना है। आराम से उनके साथ वक्त बिताता रहियो, पर मैं रोज़ रोज़ नहीं आऊँगा शादी करने, इसलिए उन्हें छोड़ और जल्दी से मेरे पास आ। रौनक की बातें सुनकर आयुष्मान की भौहें तन गई। उसके चुप होते ही आयुष्मान उस पर गुस्से से भड़क उठा। साले, ये कौन से लहजे से बात कर रहा है तू मुझसे? आऊँ अभी तेरा मुँह तोड़ने? ऐसा मुक्का दूंगा कि सारी हेकड़ी एक ही बार में निकल जाएगी, एक बार में लाइन पर आ जाएगा। ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी प्रीति ने जब आयुष्मान की बात सुनी तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वहीं फ़ोन के दूसरे तरफ मौजूद रौनक के कानों में जब आयुष्मान के गुस्से भरे शब्द पड़े तो उसके तेवर एकदम से बदल गए। वो खिसियानी हंसते हुए बोला, अरे यार, तू तो ज़रा सी बात पर नाराज़ हो गया। मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि अगर भाभी से फुर्सत हो तो थोड़े देर के लिए अपने इस इकलौते दोस्त के पास आ जा। मेरी ही शादी में आया है तू, आज मेरी हल्दी है और तू अब तक मेरे पास अपनी शक्ल तक दिखाने नहीं आया है, तो थोड़े देर भाभी को अकेला छोड़ दे और मेरे कमरे में आ। आयुष्मान ने अब गहरी सांस छोड़ी और शांत लहजे में बोला, थोड़ा सब्र कर ले, आ रहा हूँ तेरे ही पास। आवाज़ शांत थी पर आयुष्मान खिजा हुआ नज़र आ रहा था। रौनक ने हामी भरी और जल्दी आने का बोलकर फ़ोन काट दिया। आयुष्मान ने फ़ोन पॉकेट में डाला और प्रीति की तरफ घूमा। उसने पाया कि वो आंखें बड़ी बड़ी किए एकटक उसे ही देख रही थीं। अब तुम्हें क्या हुआ? आंखें फाड़े मुझे क्यों घूर रही हो? आयुष्मान ने खींचते हुए सवाल किया। बदले में प्रीति ने आश्चर्य भरी निगाहों से उसे देखते हुए उल्टा उसी से सवाल कर लिया, आप रौनक जी पर इतना भड़क क्यों रहे थे? प्रीति का सवाल सुनकर आयुष्मान सारा माजरा समझ गया कि प्रीति ने उसे रौनक पर चिल्लाते सुना है, इसलिए हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही है। आयुष्मान ने अपनी शर्ट पर आई सिलवटों को अपनी हथेली से ठीक किया जो प्रीति के पकड़ने के कारण आई थी, और गहरी सांस छोड़ते हुए गंभीरता से बोला, ये मेरे और उसके बीच का मामला है, हमारा ये सब चलता ही रहता है, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो। एक पल ठहरने के बाद उसने आगे कहा, मुझे अभी उसके पास जाना होगा तो तुम तैयार होकर नीचे चली जाना, मामा मामी और मानसी के साथ ही रहना। मैं ज़रा देख कर आऊँ कि उस कमीने को सुबह सुबह कौन से कीड़े ने काट लिया है। आखिरी की बात आयुष्मान ने धीमे से कही थी, इसलिए प्रीति ठीक से सुन नहीं सकी और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए कन्फ्यूज सी बोली, कुछ कहा आपने? नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम नीचे चली जाना। आयुष्मान ने तुरंत ही इनकार में सर हिलाते हुए प्रीति को निर्देश दिया। प्रीति ने झट से सहमति में सर हिला दिया। आयुष्मान ने आगे कदम बढ़ाए ही थे कि प्रीति की मीठी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई, मुझे नहीं पता कि आपके और उनके बीच क्या बातें हो रही थीं, पर आज उनके लिए बहुत खास दिन है, इसलिए मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि उन पर गुस्सा करके उनके और अपने मूड के साथ उनका ये खास मोमेंट स्पॉइल मत कीजिएगा। अगर उन्होंने कुछ गलत कह भी दिया जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं तो माफ़ कर दीजिएगा उन्हें। आयुष्मान प्रीति की बात सुनकर उसकी तरफ पलट गया और मुस्कुराकर बोला, समझ गया मैं, तुम ध्यान से नीचे जाना, किसी अनजान इंसान से बात मत करना, मामा मामी और मानसी के साथ ही रहना, अपना और अर्श का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आयुष्मान की परवाह देखकर प्रीति ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। आयुष्मान कमरे से निकल गया और प्रीति अपने बाल ठीक करने लगी। कुछ देर बाद वो भी नीचे चली गई। वहाँ बाहर गार्डन में हल्दी की सारी तैयारी हो रखी थी। सब औरतें एक तरफ बैठी ढोलन की तान पर पन्ना बन्नी के पारंपरिक गीत गा रही थीं। आदमी दूसरे तरफ बैठे बातों में लगे थे। सामने बने छोटे से स्टेज के पास रौनक की माँ खड़ी सब सामग्री चेक कर रही थीं और वहाँ लगे सोफे के सामने रखे टेबल पर सब ठीक से सजा रही थीं। प्रीति मानसी के पास चली आई। अर्श अपनी नींद पूरी कर चुका था और अपनी बुआ के साथ खेल रहा था। रौनक की बहनें और कुछ लड़कियां उसके साथ बातें कर रही थीं। वो था ही इतना क्यूट कि सब उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करना चाहते थे, पर इतने सारे अनजान चेहरों को देखकर अर्श मानसी से चिपका हुआ था। प्रीति के आते ही वो हाथ पैर चलाने लगा तो प्रीति ने मुस्कुराकर अपने बेटे को अपनी गोद में ले लिया और सब और निगाहें घुमाकर हल्दी की सजावट देखने लगी। ये सब देखते हुए उसे अपनी और आयुष्मान की शादी याद आ गई। कुछ भी तो नहीं हुआ था उनकी शादी में, ना वो खुश थी और ना ही इन सब रस्मों का मजा ले सकी थी। बस मंदिर में सादगी से शादी हो गई और वे पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। सब सोचते हुए प्रीति के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। हालांकि उसने अपनी शादी के लिए कभी कोई ख्वाब नहीं देखा था, पर इस तरह से शादी होगी ये भी तो नहीं सोचा था। प्रीति ने अपनी उदासी और निराशा को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया और खुद को अर्श के साथ व्यस्त कर लिया। दूसरी तरफ आयुष्मान ने जैसे ही रौनक के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहला कदम रखा, उसके इंतजार में बैठे रौनक की नज़र उसकी साफ सुथरी दाढ़ी और चिकने चेहरे पर पड़ी। पहले तो वो अपने सामने क्लीन शेव्ड आयुष्मान को देखकर चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? मेरे यार की इतनी मेहनत से उगाई फसल किसने काट दी?
आयुष्मान उसके पास आ चुका था। रौनक के एक्सप्रेशन और रिएक्शन को देखकर उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मेरी खेती थी, मेरी फसल थी तो मैं ही काटूंगा ना। कैसे? आखिर तूने अपने घने जंगल कैसे साफ करवा लिए? अपनी मर्जी से अपनी खेती उजाड़ी है या भाभी की फरमाइश थी इसलिए अपने जंगल को साफ कर लिया तूने? रौनक की मस्खरी चालू थी। वो आंखों में शरारत लिए और लबों पर शैतानी मुस्कान सजाए आयुष्मान को देखने लगा। उसका सवाल सुनकर आयुष्मान को सुबह उसकी और प्रीति के बीच हुई बातें याद आ गईं। प्रीति की धमकी याद करते हुए उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया, फरमाइश नहीं जिद बोल। पता नहीं आज सुबह सुबह अचानक उसे क्या हो गया था, सुबह उठते ही मेरी दाढ़ी के पीछे पड़ गई। धमकी देने लगी कि अगर मैंने खुद से शेविंग नहीं की तो रात को वो सब साफ कर देगी। रात को सोते हुए जाने कितने जगह कट मारती, उससे बेहतर था कि खुद ही शेविंग कर ली। आयुष्मान ने अपना दुख उसके सामने बयां किया और अपनी मजबूरी उसे बताई, पर एक अच्छे दोस्त के तौर पर रौनक उसके दुख में उसका साथ देने और उससे सहानुभूति जताने के बजाय उसकी बात सुनकर ठहाके मारकर हंस पड़ा। ओ मतलब चीरहरण कोई और करे, उससे बेहतर है कि खुद ही निर्वस्त्र हो जाओ, सारा झमेला एक बार में खत्म। रौनक अपनी बात कहकर एक बार फिर हंस पड़ा, लेकिन उसकी बात आयुष्मान को जरा भी पसंद नहीं आई। उसने रौनक को गुस्से से घूरा और कठोर लहजे में बोला, रौनक बकवास नहीं वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा।